الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. میرے محترم عزیز بہنوں اور بھائیوں، ابھی آپ نے تلاوت سماعت فرمائی، پہلے رکوع کی، سورہ یوسف کی. آپ کے علم میں ہے کہ الحمدللہ تعالی، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے سورہ یوسف کا مطالعہ لفظ ب لفظ، آیت با آیت جو ہے وہ ختم کر لیا ہے. اور آج انشاءاللہ جو مضامین ہے اس سورت کا، جو مضامین کی تقسیم ہے، سورت کا سٹرکچر ہے جو ہے وہ، اس کا انشاءاللہ تعالی آج جو ہے وہ اس کا ایک جائزہ لے لیں گے، تاکہ پھر یہ یاد دہانی ہو جائے، ریویو جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے. اور آپ کے یہ بھی علم میں ہے کہ ہم مسلسل جو ہے وہ ہر سبق کے بعد اس سورت کے اندر جو بے شمار خزانے چھپے ہوئے ہیں حکمتوں کے، ان میں سے ہم ہر سبق کے بعد ان کو جو ہے وہ جمع کرتے رہے ہیں، تو وہ بھی اس پہ بھی انشاءاللہ تعالی آج جو ہے وہ بات کریں گے. سورہ یوسف، اس کا نام جو ہے یوسف ہے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے تذکرے کی وجہ سے. ویسے تو جیسے ہم بتاتے چلے آ رہے ہیں اور دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ قرآن مجید کی سورتوں کے نام جو ہے ان کے مضامین پہ نہیں ہوتے، اور یہ زیادہ تر ایک علامت کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، سمبل کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، علامتی ہوتے ہیں یہ نام، اور جس میں کسی چیز کا یعنی ذکر آیا ہے اس طریقے سے اس کی پہچان کے حوالے سے جو ہے نام رکھے گئے ہیں. لیکن یوسف علیہ السلام، یہ سورہ یوسف کا جو معاملہ ہے تھوڑا سا مختلف ہے. اس میں یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے اور اس کا نام بھی یوسف علیہ السلام کے اوپر جو ہے سورہ یوسف رکھا گیا ہے. اس سورت میں آپ کا نام 25 مرتبہ ذکر ہوا ہے، اور پورے قرآن مجید میں 27 مرتبہ استعمال ہوا ہے. دو مرتبہ الگ طور پہ سورت کے علاوہ باہر جو قرآن مجید میں آیا ہے، تو وہ بطور حوالے کے طور پہ آیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا، جب باقی انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے تو وہاں بھی یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہوا ہے. لیکن ایک بات جو ہے بڑی منفرد ہے کہ یوسف علیہ السلام کے واقعے کا کوئی حصہ کسی جگہ پہ قرآن مجید میں اس سورت کے علاوہ کہیں پہ مذکور نہیں ہے. یعنی صرف اور صرف پورے کا پورا واقعہ بہت ہی تفصیل، اور اس کی ایک انفرادیت یہ بھی ہے کہ اس واقعے کو، یہ طویل ترین واقعہ ہے، 100 آیات سے زیادہ پہ مشتمل ہے. ہم نے ایک اور موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ جو ابھی پیچھے پڑا تھا، تو وہ بھی کم از کم کوئی 60 جو ہے وہ 65 آیات پہ مشتمل تھا، لیکن یہ اس سے بھی زیادہ ہے. یہ 100 آیات پہ جو ہے مشتمل ہے. آیت نمبر 3 سے شروع ہوتا ہے اور یہ جاری رہتا ہے غالباً آیت نمبر 103 یا 104 تک، اور یہ اس طریقے سے یہ بڑا منفرد ہے اور طویل ترین ہے، اور آپ کی زندگی کے بیشتر جو ہے واقعات کو جو ہے وہ کور کرتا ہے. سورت کا حجم جو ہے اس کی 111 آیات ہے، اور یہ جو سورتیں 100 آیات والی ہیں ان کے اندر اس کا جو شمار ہوتا ہے، اور اس کے 12 رکوع ہیں. اور یہ جو پیچھے ہم نے سورتیں سے پہلے پڑھی ہیں، سورہ یونس اور سورہ ہود، وہ بھی کم و بیش اسی اتنی آیات، 111 115 اس کے اندر اور 100 سے زیادہ ہیں، انہی جیسی اس کا حجم بھی کم و بیش اتنا ہی ہے. یہ کب نازل ہوئی ہے اس سورت؟ یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور مکہ میں یہ جو ہے 10 نبوی کے بعد کا جو پیریڈ ہے، اور 13 نبوی کا، اس دوران میں یہ ہوئی ہے، اور یہ سورہ ہود کے بعد نازل ہوئی ہے. اور بہت تک یعنی اس بات کا امکان ہے کہ یہ جو سورہ ہود ہے اور اس سے پہلے سورہ یونس ہے، تو اس طریقے سے یہ ترتیب وار سورتیں جو ہے نازل ہوئی ہیں، اور اسی ترتیب سے پھر جو ہے یہ موجود بھی جو ہے وہ ان کو رکھا گیا ہے. قرآن کی جیسے میں نے کہا کہ دیگر سورتوں کے برعکس اس میں ایک معاملہ یہ ہے کہ یہ نشب جو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، یہ مسلسل ایک واقعہ ہے. یعنی ایک ہی واقعہ اسی پورے جو ہے سورت کے اندر بیان ہوا ہے، اور دوسرے مضامین جو ہے وہ اگرچہ جو ہے وہ نصیحت اور دعوت کے اعتبار سے تو موجود ہے، لیکن کوئی دوسرا کوئی بات جو ہے وہ بیان نہیں ہوئی ہے اس کے اندر. اچھا، اس کا ربط کیا ہے پچھلی سورت کے ساتھ جو ہم نے پچھلی سورت پڑھی تھی؟ سورہ ہود جو ہے بہت مشہور ہے، अपने तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के जिक्र के साथ कि एक एक नबी का और उनकी कौम का और फिर उनकी दावत का और फिर उनकी जो है कौम की अंजाम का जो है वो जिक्र किया गया है, और अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ उनकी कौमों ने क्या किया उसका तذکرہ है। इस सूरत में जो ज्यादती है जो अपने भाइयों की तरफ से जो हुई है अंबिया अलैहिस्सलाम में से एक नबी मतलब यूसुफ के साथ उसका जो है बयान हुआ है। तो गुज़श्ते सूरतों में तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ है कि तुम्हारे साथ जो ये रवैया अख्तियार किया जा रहा है इस पर सब्र अख्तियार करो, तो इसमें सब्र का वो बेहतरीन नमूना जो है वो पेश किया कर दिया गया है। और दो मरतबा जो है वो सब्र के जो जो बेहतरीन सब्र है सब्रुन जमील उसके अल्फाज जो है वो अदा हुई है। अच्छा गुज़श्ते सूरतों के अंदर भी तौहीद के मजामीन है, रिसालत के हैं, आखरत के हैं, कुरान की हकानियत का बयान हुआ है, और ये भी इसी तरह इनका बयान भी इसी सूरतों के अंदर मौजूद है, लेकिन बिला वास्ते से ज्यादा बिल वास्ता तौर पे जो है ये मजामीन मौजूद हैं जिन्हें यूसुफ अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, आपकी बातें हैं, लेकिन बीच बीच में दरम्यान में तौहीद का मजमून आ जाता है, रिसालत का मजमून आ जाता है और आखरत का मजमून भी आया है। इस सूरत का शान नजूल क्या है, ये जो है जब 10-11 साल 12 साल हो गए तकरीबन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत देते हुए, तो मक्का के मुशरिकीन उसमें रहते थे कि किसी तरीके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलत साबित कर दो, उसके लिए से मुख्तलिफ तरीके वो अख्तियार करते थे। उनमें से एक ये उनके जहन में ये आया कि आपका इम्तिहान लेना चाहिए और कोई ऐसी बात जो है पूछनी चाहिए जो यहाँ के अरब कल्चर से मुतल्लिक अरब की तारीख से मुतल्लिक ना हो। तो फिर मदीना गए यहूद के पास और यहूद से पूछा कि हमें कोई ऐसी बात बताएं जो हम हमारा एक भाई है उसने नबी होने का दावा किया और हम उसे इम्तिहान लेना चाहते हैं। तो यहूद ने फिर उनको बताया कि जाके ये सवाल पूछो कि बनी इसराइल के नान से मिस्र जाने का क्या मामला था, मिस्र क्यों वो हिजरत करते गए। तो जाहिर है ये अरब के लोग जो है इस बात से बिल्कुल नावाकिफ थे कि ये मामला जो है वो जजीरतुल अरब से बाहर पेश आया था और उनकी तारीख के अंदर ये जो है चीज मौजूद नहीं थी, तो ये बिल्कुल एक नई चीज थी। अब उन्होंने ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो अल्लाह ताला ने फिर वही नबी अकरम सल्लम पर फरमाई और ये सारे का सारा वाक्य नुआन जो है बिल्कुल जो है वो बता दिया। लेकिन ये अल्लाह ताला का कलाम है, ये ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला ने सिर्फ जो है वाक्य बता दिया, किस्सा बता दिया, किस्से के अंदर जो है बड़ी बेशुमार हिकमतें हैं, बल्कि इससे ज्यादा जो किस्सा है वो बिल्कुल कुफार मक्का के ऊपर मुशरिकीन मक्का के ऊपर चस्पा होकर रह गया कि देखो उस किस्से में दो बड़े किरदार हैं, यूसुफ और बरादरान यूसुफ, एक जो हक का लंबरदार है एक नबी है और दूसरे जो है उसकी मुखालफत करने वाले हैं उसको मारने वाले हैं उस पर जुल्म सितम करने वाले हैं। इस वाकये के अंदर इस सिनेरियो के अंदर मक्के की जो सिनेरियो था उसके अंदर भी यही दो किरदार हैं, उनके अंदर एक किरदार जो है रसूल का है जो रसूल नबी होने का दावा कर रहा है, उसके मुकाबले में उसके भाई बंद हैं, उसकी कौम है जो उसको जो है वो उस पर जुल्म सितम करती है, उसके जाने वालों पे जुल्म सितम करती है, उसके फॉलोअर पर उसके मुतबईन पर और उसकी जान के दरपे है। और ये वो मौका था जब ये कुरैश मक्का जो है आपकी जान के दरपे हो रहे थे, वो चाहते थे कि किसी तरह या तो आपको निकाल दें या फिर जो है किसी तरीके से आपको जो है इस बिल्कुल खत्म कर दें। तो बिल्कुल बैन ही जो है वाक्य सुना के जो है उनके ऊपर जो है वो बात दसपा रख दी। अब तारीख के आईने के अंदर देख लो कि एक तो वाक्य तुम्हें बता देगा तुम्हारी जो है वो बात कि ये शायद बता नहीं सकेगा, आप तुम्हें ईमान ले आना चाहिए, जाहिर ही बात तुम्हारी पूरी होगी बता दी गई है। दूसरा ये कि आप देख लो कि कौन तारीख के सही तरफ जो है वो खड़ा है, कौन किस तरफ खड़ा है, कौन जुल्म सितम का जो है लंबरदार है और कौन हक का परचम उठाए हुए है। तो ये सारी बातें जो है उनको बता दी गई हैं। तो इस तरीके से इसलिए कि ये अल्लाह ताला का कलाम है, अल्लाह ताला ने किस खूबसूरती के साथ इस सूरत को जो है वो फिर बयान फरमाया है। सूरत का मौजू क्या है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाकयात की रोशनी के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शानदार और रोशन मुस्तकबिल की तरफ इशारा किया गया है। देखिए वाकया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का बताया गया, हुआ क्या है यूसुफ अलैहिस्सलाम के अंदर में क्या हुआ कि आपको कत्ल ऑलमोस्ट कत्ल कर दिया गया, कुएं में फेंक दिया गया अंधे कुएं में जिसके बाहर निकलने का इम्कान नहीं था, या फिर जो है वो अगर एक रिवायत में है कि आपको उन्होंने देखा कि भाइयों ने कि इसको जो है वो लेके जा रहे हैं काफले वाले, तो ठीक, उन्होंने कहा कि आप इसको गुलाम बना लिए गया। उस वक्त तो इस गुलामी का रिवाज था, तो ठीक है, बस हमारा जो है किस्सा खत्म हो गया इसका, भाई का हमारे। लेकिन अल्लाह ताला ने किस तरीके से उनको जो है उरूज अता फरमाया, और दुनिया की सबसे बड़ी सिविलाइज्ड कौम जो उस वक्त मौजूद थी जो मिस्र, उसकी फरमारवाई अल्लाह ताला ने। तो ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशारत दी गई कि आप जो है जहां से आपको जो है वो निकाला जाएगा, आप बिल्कुल वहीं से वापस आएंगे, और ये पूरे का पूरे जजीरतुल अरब जो है आप इसको फतह करेंगे और आपके जेर नगीन होगा, आपके कामिल इक्तदार की पेशनगोई की गई है और गलबा इस्लाम की बशारत दी गई है। जिस तरीके से यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो पूरे के पूरे तरीके से गालिब आए, और जो हर चीज उनकी जेर नगीन हो गई, जेर नगीन हो गई, और फिर जो है उनके भाई भी आपके जो है सामने झुक गए। तो बिल्कुल इसी तरह आपके जो है ये मुखालफत करने वाले भी आपके सामने जो है झुक जाएंगे। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़े मुश्किल हालात के अंदर, मक्का के, आपको पता है कि 10 नबी के बाद 13 नबी का जो जमाना है, ये वही का चौथा दौर है, और बड़ा शदीद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बड़ा भारी दौर था। आपकी नबुवत के सबूत भी है ये कि यूसुफ सलाम की सीरत तय्यबा तारीख और वाकयात के नहायत ही ऐसे अंदाज में बयान किया गया है, और ये वजाहत कर दी गई है कि नुज़ूले कुरान से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आप यूसुफ सलाम के वाक़े से, सीरत से, तारीख से, बनी इसराइल की तारीख से वाकिफ न थे, और इस वाक़े को बताकर, यानी तफसीलन बताकर, बड़ी तफसीलात के साथ बताकर जो है ये जो दावत और रिसालत का इनकार कर रहे थे, तो हुज्जत का इनकार दी गई कि देखें इस आपके भाई को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो कुछ मालूम नहीं था तुम्हारी तरह, और अब उसने ये सारी बातें तफसील के साथ बता दी, तो उसके पास वही के जरिए के अलावा कौन सा जरिया है। तो ये भी एक बड़ा इरेफ्यूटेबल एविडेंस था जिसको कोई झुटला नहीं सकता था उनके पास, ऐसा उनके समझने बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो तसल्ली के सामान है कि हालात बड़े मुश्किल है मक्का के अंदर और मुसलमानों के लिए, नबी वसल्लम के तबईन पैरोकारों के लिए, लेकिन आखिरकार अल्लाह ताला उन्हीं को इज्जत, शौकत और बुलंदी, सरबुलंदी अता फरमाएगा, और आप इन अहले मक्का की, मुशरिकीन मक्का की मुखालफतों को जो है वो आप बर्दाश्त करें, जिस तरीके से यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ सख्तियों को जिंदगी के अंदर बर्दाश्त किया और अल्लाह ताला ने फिर उनको जो है बिलाखिर कामयाब फरमाया, और आप जो है वो गालिब होके रहेंगे। तो ये बात जो है बताइए, और तारीख शायद एक ऐसा ही हुआ बिल्कुल, फतेह मक्का के बाद जो है जब कुफारे मक्का आपके सामने जमा हुए और मक्का फतह हो गया, तो आपने उनसे सवाल पूछा कि तुम मुझसे क्या तवक्कुल रखते हो, तो फिर मैं तुम्हारे साथ क्या मुआमला करूंगा, तो उन्होंने कहा था अखुन करीम वबन अखुन करीम, आप एक करीम भाई हैं और हमारे करीम भाई के बेटे हैं, तो हमें आपसे जो है अफो दरगुजर की तवक्को है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आज तुमसे वही कहता हूँ यूसुफ सलाम ने कहा था अपने भाइयों से, आज तुम पर कोई पाबंदी नहीं, ला तसरीब अलैकुम अल्यौम अंतुमुल तलका, आज तुम सब जो है आजाद हो जाओ। ये बिल्कुल देखें कि हूबहू जो आपको पहले ये वाक्य बताया गया, और फिर जो है जैसे मैंने कहा पहले कि इसके अंदर आप सवाल पूछ सकते हैं कि इस सूरत के अंदर कहाँ पे ये बताया गया कि आपको कामिल इक्तदार और गलबा जो है हासिल होगा, इसलिए कि ये सबक है इसका, ये यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी का सबक है, आपको बताया जा रहा है और यही होगा, और देखें कि आखिर के ऊपर बिल्कुल एग्जैक्टली वही हो के रहा। सूरत के मजामीन जो है तीन ही बड़े आसान है इसकी तकसीम मजामीन की। पहली दो आयात में कुरान मजीद के नजूल का मकसद बताया गया तअक्कुल, कि अकल से काम लेना और कुरान मजीद में गौर व फिक्र करना और उसे नसीहत पकड़ना, और फिर कुरान मजीद की खसूसियात का भी तذकरा है और दो आयात पर मुश्तमिल है, और उसके बाद जो है जो तकरीबन आप देख लेंगे 3 से लेकर 101 तक 99 आयात हैं, ये जो है वो 98-99 आयात है, ये इससे यूसुफ अलैहिस्सलाम तफसील के साथ इसके अंदर बयान किया गया है इसके अंदर। और फिर आखिर में जो आखिरी रुकू है 102 से लेकर 111 आयात तक, तो इसमें कुरैश को इबरत की जो है दावत दी गई कि आप देख लो अल्लाह ताला जो है हर चीज के ऊपर जो कुदरत रखता है, उस खुदा ने जिसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अंधे कुएं से निकाल कर मिस्र के तख्त पे बिठा दिया, तो वो इस बात पर भी कादिर है इस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज्जत अता फरमाए और उसके लाए हुए दीन को तमाम अदियान के ऊपर गालिब कर दे और ये होकर रहेगा मान लो, तो जो है ये दावत भी उनको जो दी गई है, इसके इस लिहाज से इसके मजामीन जो है बड़े आसान है याद रखने। अब देखें कि इनकी मुख्तलिफ तजिया आयात का, के मुख्तलिफ आयात के अंदर किस चीज का बयान हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम को पढ़ के आए हैं, ये सिर्फ एक रेफरेंस के तौर पे है, चाहे इसको याद रखने की नहीं इंसान रख सकता। ये सारे यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से के मुख्तलिफ हिस्से हैं जो बयान हुए हैं, तो ये उनका तज़किरा है। इस सूरत के अंदर यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से के अलावा कुछ दूसरे मुबाइस भी आए हैं और उनमें सदाकत कुरान का बयान है, जिस शुरू के अंदर भी है और आखिर के अंदर भी है, बिल्कुल बड़ा दोनों इफ्तिताही के अंदर भी और इब्तदाई के अंदर भी और आखिर इख्तितामी के अंदर भी कुरान की सदाकत। और ये कुरान की सदाकत के बयान पिछली सूरतों के अंदर सूरह अनाम के अंदर, सूरह जो हूद के अंदर और सूरह यूनस के अंदर भी इसी तरीके से आया। दावत तौहीद, आखरत और रिसालत ये जो है भी इसी से इस सूरत के अंदर आई है, और फिर मुकरीन को दावत भी दी गई है और उनको जो है पैमाइश भी की गई और इबरत नसीहत की दावत भी दी गई है। ये मजमून भी इस सूरत के अंदर जो आए हैं और इन बिटवीन द लाइंस जहाँ पे मुख्तलिफ किस्से जो है आया है, तो वहां पे दरम्यान के अंदर भी बहुत सारी बातें जो है वो इबरत के लिए और नसीहत के लिए और जो है वो सबक हासिल करने के लिए बताई गई। अब ये सवाल आपको जो है वो पूछना भी चाहिए और आपको याद भी रखना चाहिए और आप लोगों को आगे आपको बताना भी चाहिए और ये याद भी कर लेना चाहिए आप। एक पैराग्राफ है, इस पे हम देखते हैं ये किस्सा क्यों एक बेहतरीन किस्सा है। असल और कसम अल्लाह ताला ने कुरान मजीद ने इसको फरमाया बहुत अच्छा किस्सा है, बहुत खूबसूरत किस्सा है, सबसे खूबसूरत किस्सा है, या आप यूं भी कह सकते हैं कुछ उलमा ने जैसे कहा कि बेहतरीन किस्सों में से एक बेहतरीन किस्सा है। ठीक है, ये जो है सब इसकी ताबीरें हैं और असल और कसस की, और आप उसके बारे में जो है वो सारी ताबीरों में से कोई ताबीर कर सकते हैं। अच्छा, तो फिर सवाल होता है कि क्या चीज इसको अहसन उल कसस बनाती है, क्या कौन सी बात है। ये पूरा किस्सा कुरान मजीद में एक वाक्य पूरे मुकम्मल वाक्य के तौर पे आया है और जिस तरतीब की रियायत की गई है दूसरे वाक्यात पे नहीं पाई जाती। मसलन जो मुख्तलिफ किस्से हैं कुछ दूसरे कुरान मजीद के, उनके मुख्तलिफ हिस्से कुरान मजीद में मुख्तलिफ मकामात पर हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये सारा किस्सा एक बड़ा ही वेल इंटीग्रेटेड किस्सा है। पूरा एक किस्सा यूसुफ तकरीबन 100 आयात पे मुश्तमिल है, जो तवालत के अतबार से ये तवील तरीन किस्सा है, ये इसकी एक डिस्टिंक्शन है। और जो कुरान मजीद को आमतौर पर वाकियात को तारीखी अंदाज में बयान नहीं करता कि ये हुआ और उसके बाद ये हुआ और उसके ये बाद हुआ, जैसे कि जो है वो वहां पे बुक ऑफ जेनेसिस के अंदर और उसके बाद बुक ऑफ डिटरनोमी में बाइबल के अंदर जो है वो तारीखी बिल्कुल जो है तारीखी अंदाज के अंदर जो है, तो ऐसे लग रहा होता है कि आप जो है बिल्कुल तारीख की एक किताब पढ़ रहे हैं। लेकिन जो है वो इस ये वाक्य थोड़ी सी एक्सेप्शन है, इसको जो है वो तारीखी अंदाज में बयान किया गया है लेकिन खालिस्तन तारीखी अंदाज भी नहीं है। आप जो है ये वाक्य यानी जो ये वाक्य जो है तारीखी जो यूसुफ अलैहिस्सलाम का आपकी रिसालत के इम्तिहान के पस मंजर में नाजिल हुई, जैसे मैंने कहा आपसे सवाल पूछा गया तो पूरे का पूरा जवाब जो है तो बता दिए कि देखो ये वाक्य है। जाहिर एक तो उसके जवाब देना था, इसलिए उसको तारीख के अंदाज में बयान किया गया कि ये यूसुफ अलैहिस्सलाम है, ये किस्सा यहाँ से शुरू हुआ ख्वाब से और फिर ये आगे इस तरीके से बढ़ता गया। और ये बात जो है कुरान करीम के उसलूब से हटी हुई है कि कुरान किसी वाक्य को तारीखी अंदाज में बयान करे, लेकिन कुरान ने इसको मुख्तलिफ किस तरह किया है कि जा बजा मुख्तलिफ जो है बातें बयान करने के बाद, किस्से का एक टुकड़ा बयान करने के बाद, फिर जो है उसके जो वाकयात है उसे नतायज अखज करके उनके तबसरा किया जाता है कि देखिए ये बात ऐसे नहीं होती है और ये बात ऐसी है और ये बात जो जो करता है वो ऐसे नतायज से उस पर जो है वो मुरतब होते हैं। तो ये इस तरीके से फिर हमें बिल्कुल तारीख की किताब पढ़ने का सा जो है महसूस नहीं होता कि कोई तारीख की किताब पढ़ रहे हैं, बल्कि साथ फरमाइश भी, नसीहत भी, हिकमत भी, ये सारी चीजें साथ साथ जो है चलती रहती हैं। ये किसी का मर्जी किरदार जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़ाते गिरामी है और कुरान मजीद ने आपको आला किरदार का हामिल, हुस्न अखलाक का एक मुरक्का, एक पुरकशिश शख्सियत, हम जोहद, साबिर और शाकिर, आली हिम्मत और बड़ी इंतहाई बावकार शख्सियत के तौर पर आपको पेश किया है। बरखिलाफ जो है वो बाइबल के, जिसमें आपका किरदार जो है बहुत ही जो है वो जो ऐसा पेश किया गया है जो अंबिया अलैहिस्सलाम के किरदार से कहीं तक फरोता है। अच्छा, अब वो बात है जो मैं आपसे कह रहा था कि ये बात आपको जो है वो याद रख लेनी चाहिए और याद कर लेनी चाहिए कि ये किस्सा जो है क्यों बेहतरीन किस्सा है। अच्छा, ये याद रख लें कि ये महज किस्सा नहीं है बल्कि इसमें इनफरादी जिंदगी यूसुफ अलैहिस्सलाम की और इज्तिमाही जिंदगी, खानदानी जिंदगी और उसके बाद में जो सोशल और सिविक लाइफ थी जो मिस्र की उससे मुतल्लिक, और फिर जो गवर्नमेंट की जिंदगी, गवर्नमेंट आप जाहिर हुकूमत के अंदर आ गए और फिर जो है वो हुकूमत की इकतसादियात है, हुकूमत का निजाम है, तो ये सारे के सारे इज्तिमाही जिंदगी के बेशुमार रमूज इसमें बयान हुए। इसमें दीन भी है, दुनिया भी है, सीरत और सवाने भी है, सियासत हुकूमत के रमूज भी इसके अंदर है, इंसानी नफ्सियात का जिक्र भी इसके अंदर है, मुआशी खुशहाली की तदबीर भी है, जोहद तकवा का जिक्र भी है, अंबिया और सालीन का भी है, मलाइका और शयातीन का भी है, जिन्नो इंस का है, चौपाइयों और परिंदों का तस्करा है, बादशाहों, ताजरों, आलमों और जाहिलों के हालात है, और राय रास से हट जाने वाली औरतों की हीला साजी और मकारी है, गुमनामी और शोहरत है, गुर्बत और सरवत है, इज्जत और जिल्लत है, सब्र और सबात का तस्करा है, और इन तमाम खवास ने मिलकर सबने उसको एक बेहतरीन किस्सा बना दिया। मैं चाहता हूं कि आप जो है इस पैराग्राफ और ये जो है कि ये किस्सा क्यों एक बेहतरीन किस्सा है आपको याद कर लेना चाहिए और आपको जो है आगे बताना चाहिए, और इसका और ये इसकी खूबसूरती है इसके अंदर हर चीज मौजूद है, और इंशाल्लाह हम आगे इस पर थोड़ी सी बात। हजरत यूसुफ सलाम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात में जैसे मैंने कहा मुशाबहत है। यूसुफ सलाम के नबूवत का आगाज रूए साले से हुआ, इसका कुरान मजीद में जिक्र है। आज जो हमने आयात तिलावत जिनकी सुनी उनके अंदर जिक्र है, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा था और उससे उसका जो है वो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को अंदाजा हो गया कि ये ख्वाब जो है वो सच्चा है और ये उनका बेटा जो है ये नबी बनने 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 वाला है, ये नबी बनेगा। तो हजरत सल्लम की नबूवत का आगाज भी रूए साले से हुआ और ये भी हदीस मुबारक में हमें इससे पता चलता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम पर उनके भाइयों ने हसद की और मुख्तलिफ इजाएं पहुंचाई, और जो है वो इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी आपके जो कुरैशी जो भाई थे उन्होंने भी आपको शदीद तकलीफें पहुंचाई। यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कत्ल करने की साजिश की, और इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कुरैश ने दारुल नदवा में आपको कत्ल करने का मंसूबा बनाया, और बिलाखिर गलबा जो है अल्लाह ताला ने आपको और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो है अता फरमाया। जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों को माफ कर दिया था, इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फारे मक्का मुशरिकीन मक्का को माफ कर दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम माफ करने के बाद जबान पर कोई शिकवा और शिकायत नहीं लाया, उनको बताया नहीं कि तुमने मेरे साथ साथ क्या किया, कुएं में फेंका और ये सब कुछ। इसी तरह आपने भी लोगों से कोई शिकवा शिकायत नहीं की कि तुमने मुझे कत्ल करने की कोशिश की, हमारे घरों पर, हमारे घरों पे, हमारे जो है जायदादों पे और चीजों पे कब्जा किया। आपने कोई लफ्ज शिकायत जो है जबान से नहीं निकाला और यही फरमाया अंतुम मुतलका, तुम सब आजाद हो, तुम्हारे ऊपर आज कोई किसी किस्म की जो है पूछ नहीं है। आज जिस तरह यूसुफ सलाम ने भाइयों के साथ सुलूक को एहसान किया, उनके साथ माली तआवुन किया, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के साथ सुलूक एहसान फरमाया, और गनाइम से जो है माल गनीमत था, तब जब आपको पता है कि फतेह मक्का हुआ तो फतेह मक्का के फौरन मुतसिलन उसके फौरन बाद गजवे हुनैन हुआ, इसमें सबसे ज्यादा जो है वो माल गनीमत वहां से जो है वसूल हुआ, और वो भी इसी तरह आपने फिर ये ताजा सबसे जो करीब करीब ईमान लाने वाले थे मक्का के लोग उनके अंदर आपने जो है फिर इसको जो है वो बांट दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के उनके मुख्तसर सा जो लाइफ स्केच है, आप याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे, इसहाक अलैहिस्सलाम के पोते और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते थे, और बाइबल से हमें पता चलता है कि याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, 4 बीवियां थी। यूसुफ और उनके भाई जो छोटे भाई थे बनियामीन, एक बीवी से थे और बाकी 10 जो थे दूसरी 3 बीवियों से थे। तो फलस्तीन में याकूब अलैहिस्सलाम मकाम जाए मकाम जो है हेब्रोन था, जिसे आजकल جو ہے الخلیل کہا جاتا ہے، جہاں حضرت اسحاق ان کے اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی رہا کرتے تھے، اور حضرت یعقوب کی کچھ زمین نابلس میں بھی موجود. تو آپ اگر بائبل کی تحقیق کو صحیح مانیں تو آپ کو تقریباً 1906 قبل مسیح میں جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے، اور پھر 1890 کے قریب جو ہے یہ زمان واقعہ پیش آیا جس میں آپ کو کنویں میں پھینکا گیا، اور اس وقت حضرت یوسف السلام کی عمر 17 برس تھی. مصر میں اس زمانے پر جو ہکسوس کنگ جو تھے، چرواہے بادشاہ، یہ عربی نسل تھے، یہ جا کے عربوں کے علاقوں سے جا کے مصر میں پہنچ گئے اور وہاں پہ حکومت پہ قبضہ کر لیا اور وہاں پہ جو ہے قابض ہو گئے. تو جب یوسف علیہ السلام مصر گئے تو یہ ان امالیک ان کو کہا جاتا تھا، ان کی حکومت تھی، اور وہاں پہ ایک بادشاہ جو آپ کا جو ہے ہم اثر تھا وہ ایپوفس جو ہے تھا، وہ اس وقت جو ہے فرما روا تھا. آپ 17-18 سال کی عمر میں مصر پہنچے، مصر کے دارالحکومت اس وقت ممفس تھا، اور 2-3 سال عزیز مصر کے گھر رہنے کے بعد پھر 8 سال جیل میں رہے، اور 30 سال کی عمر میں پھر موقع فرما روا ہوئے، اور 80 سال تک بلا شرکت ٹھہرے تمام مصر پر جو حکومت کی، اور اپنی حکومت کے 9 یا 10 سال انہوں نے اپنے خاندان کو مصر بلا لیا، اور پھر یہ لوگ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک مصر میں رہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے پھر ہم آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اس کو تفصیل سے پڑھا ہے، موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے وہاں سے پھر جو فرعون کی غلامی میں جو چلے گئے تھے وہاں سے لے کے نکلے. اب سورہ یوسف جو ہے دیکھیں، سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کے اور ان کے خاندان کا قصہ کے ساتھ ساتھ بالواسطہ اور بلا واسطہ توحید کی دعوت بھی دی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ پوری شرع صدر کے ساتھ اور علا وجن بصیرہ جو ہے یہ جو دعوت دیتے رہے، جو ہے قرآن کی دعوت جو دے رہے ہیں، دین کی دعوت دے رہے ہیں، آپ جو ہے اس کو دیتے رہے، آپ بھی اور آپ کے ساتھ جو ہے آپ کے اتباع کرنے والے مومنین بھی. یہ بڑا ایک طویل قصہ ہے جو آپ کی لڑکپن سے لے کر جو ہے 17 سال کی عمر سے لے کر پھر 17-18 سال کی عمر سے لے کر پھر 20 سال بعد جو آپ کی جوانی میں 38 سال کے تھے مصر کے فرما حکمران بنے، اس عرصے پہ جو ہے محیط ہے. قرآن کے صرف اس قرآن کے اندر قصے کے صرف وہ حصے بیان کیے گئے ہیں جو دعوت اور ہدایت رہنمائی اور اسباق رموز پر مشتمل ہیں، باقی غیر تفصیلات غیر ضروری تفصیلات جو ہیں ظاہر ہے یہ اس میں کبھی 30 سال کا قصہ ہے، ظاہر اس کی ظاہری غیر ضروری تفصیلات جو چھوڑ دی گئی ہیں کیونکہ یہ قرآن کا اسلوب نہیں ہے. قرآن نے بہت اہم صرف مقامات کو تذکرہ کیا ہے. حکمت اور اسرار اور رموز کے لحاظ سے یہ سورت ایک پورا جو ہے وہ گنجینہ ہے، ایک ٹریئر ہے جسے علماء مفسرین نے حکمت و اسباق کے موتی چن چن کر ان کو لڑیوں میں پرویا ہے، ہمارے لیے جو پیش کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی گئی ہے کہ آپ یوسف علیہ السلام کی طرح دعوت توحید کا کام علا وجل بصیرہ جاری رکھیں، یہ جو بات بتائی گئی ہے. اب جو ہے دیکھیں کہ ہم نے سورت کے اندر جو آ آ آ جو جو مطالعہ کیا تو وہ کیا تھا مطالعہ، تو ہم نے 111 آیات کو پارا رکوع ان کا الحمدللہ مطالعہ کیا ہے. ہماری 12 قرآن کلاسز اس پہ مشتمل تھا، یہ 3 مہینے لگے ہیں اس کو. اس میں 4 موضوعات پر ہم نے زمینیں جو ہے وہ اضافی مواد اور زمینیں جو ہے شامل کیے، اور کل فیل جو وربس ہم نے صورت کے اندر ہم نے جن کا جو مطالعہ کیا ہے جو پڑھے ہیں وہ 476 ہے، اور جو ہے ان کی تفصیل نیچے ذرا دی گئی ہے. صورت کے رموز و اسباق ہر سبق کے بعد ہم نے صورت کے رموز و اسباق جو ہے کہ ان کے اندر کیا سبق پوشیدہ ہے ان آیات کے اندر وہ جمع کیے ہیں، اور پھر ان کو اکٹھا کمپائل بھی میں نے کر دیا ہے. وہ کل 300 ہیں، یعنی 300 اس صورت کے رموز و اسباق اور حکمتیں ہیں جو ہم نے جو ہے جمع کی. یقینی طور پر اس سے بھی زیادہ ہوں گی، لیکن جو ہے وہ جتنی ہم جو ہے وہ کر سکے، میں یقینی طور پر وقت کی کمی کے باعث اس سے زیادہ مطلب وہ کام نہیں کر سکا، لیکن یہ ہم نے الحمدللہ ان کو جمع کیا ہے، اور سب جمع کرنے کے بعد اس کو ایک ڈاکومنٹ 300 کو اکٹھا جمع کیا ہے، اور 300 کو پھر میں نے اپنی بچوں کے لیے اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا ہے، اور وہ آپ دونوں یہ الحمدللہ اردو اور انگلش کے یہ ڈاکومنٹ جو ہے ہمیں موجود ہیں، اور یہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ جو ہے وہ شیئر کریں گے. جو ساتھی انگلش میں بہت سارے انگلش سپیکنگ جو ہمارے بھائی ہیں جن کے بچے بھی جو ہے وہ انگلش سمجھتے ہیں یا پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ شیئر کیا ہے، اور الحمدللہ फैमिलीज ने, जो बाकी फैमिलीज हैं उनको भी इससे जो है वो उन्होंने फीडबैक आया है। आप जो साथी हम शेयर कर देंगे, जो साथी चाहते हैं इंग्लिश उनके साथ इंग्लिश भी इंशाल्लाह कर देंगे। अच्छा, ये सूरत के में अंदर मुख्तलिफ 233 उनवानात मौजूद हैं सूरत के अंदर, जो हमने इससे मैंने एक्सट्रैक्ट किए हैं कि ये मुख्तलिफ टैग्स हैं, ये उनवानात हैं, इनका थोड़ा सा आगे इसका हम आपको मैं वजाहत करता हूँ इसकी, कि देखें कि एक एक, एक आयत है उसके अंदर मुख्तलिफ उनवानात, मुख्तलिफ जो है वो टैग्स उसके हैं, वो जो है उसको भी हमने जमा किया है मैंने, और 233 उनवानात हैं जो इस सूरत के अंदर मौजूद है। तो अंदाजा कर सकते हैं कि किस तरीके से ये सूरत जो है हिकमतों और उस रुबूज और सबाक का जो खजाना है, और ये भी इंशाल्लाह आपके साथ जो हम शेयर करेंगे। अब ये जो जो अफाल है जो मुख्तलिफ हमने पढ़े हैं, फेल की पहली हालत जो है वो 345 वर्ब है, दूसरी फेल की जो हालत है तफील उसकी 25 वर्ब है, तीसरी के 7 है, चौथी के 62 है, पांचवी के 8 है, और छठी में कोई फेल नहीं हमने पढ़ा है, सातवीं में 1 है, और आठवीं में 17 है, नवीं में 1 है, और दसवीं हालत जो है फेल की उसमें जो है वो 10 है। अच्छा, ये जो फेल की हालतें हैं मुख्तलिफ ये क्यों होती हैं, तो इंशाल्लाह ताला हम हमारा जो अगला प्रोग्राम होगा वो एक प्रोग्राम की हम बीच में जो वो ब्रेक देंगे, और अगली तफसील जो होगी हमारा हमारा प्रोग्राम होगा वो इसी पे होगा कि ये जो फेल मुख्तलिफ हालतें हैं और जो बुनियादी किस्म की जरूरी जो चीजें हैं, इस्तिलाहात हैं, जो बिल्कुल बेसिक बुनियादी थोड़ी सी जो ग्रामर है कुरान को समझने के लिए दरकार है, वो एक प्रोग्राम पूरा इंशाल्लाह ताला उस पे अगला प्रोग्राम उस पे इस पे करेंगे। अब आप पूछ सकते होते हैं कि ये कई साथी जो है हमने इसका तذکرہ पहले कई दफा किया है, लेकिन कई साथी फिर भी पूछते हैं कि ये आप देख रहे हैं कि रोमन लेटर्स भी लिखी हुई है, एक दो एक से लेकर 10 तक, फिर नीचे उनके बाप भी लिखी हुई है, जैसे तफील मुफाइला अफान तफाउल तफाउल इफार, ये भी लिखी हुई है, तो ये क्या होते हैं, ये इनका इस्तेमाल क्या है, इनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, तो ये भी इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्राम के अंदर इनके बारे में अंदर जो है वो इस पे बात करेंगे, और ये एक किस्म की एड होगी जो हमें आइंदा के जो साथी, अभी हमने रिसेंटली कुछ अरसे में पीछे ज्वाइन किया है, कि दूसरे साथी भी जो इस मतलब सवाल रखते हैं इंशाल्लाह ताला आइंदा उनको कुरान का ये फॉर्मेट और कुरान के ये जो अंदाज समझने के अंदर फिर आसानी होगी इंशाल्लाह। ये वो रमूज और असबाक है जो हमने जो जमा की है, ये एक फाइल से उसके सिर्फ स्क्रीन शॉट है, सूरह यूसुफ के 300 रमूज और असबाक और हिकमतें, तो ये जो है मुख्तलिफ आयात से उनको जमा किया हमने, और उनको जो किया कि एक काफी सारे पेजेस हैं, जाहिर है मेरे ख्याल में 10 12 13 14 ऐसे भी ज्यादा पेजेस हैं, तो जाहिर है यहाँ पे सारी शेयर नहीं की जा सकती थी, आपको इंशाल्लाह जब हम अपलोड करेंगे तो ये भी अपलोड उसमें इंशाल्लाह कर लेंगे। इसी तरीके से उसका जो इंग्लिश जो है वो ट्रांसलेट किया गया, उसको इसको किया है द डिवाइन विजडम हिडन लेसन मोरल्स सूरह यूसुफ, तो ये जो है इसको भी ये तो उसका खाली सिर्फ तारुफ है, और बाद में फिर जो है ये इस तरीके से वो उनको भी जमा किया गया है, ये सारे के सारे उनको 300 जो है वो जमा किया गया, तो वो भी ये फाइल है इंशाल्लाह ताला ये भी आपको शेयर करेंगे। ये सूरह यूसुफ के उनवानात हैं, टैग्स हैं, टैग्स मतलब है कि ये देखें कि इसका क्या इनके उनवानात क्या हो सकते हैं, एक आयत है एक आयत के क्या उनवान हो सकता है, तो आप देख लेंगे इसे कुरानी किससे मकर के असबाब क्या है, गुजशत अकवाम गुजशत की क्या अहमियत है, इसमें इल्म नफ्सियात इसमें कैसे जो बयान हुआ है, अहले खाना के नफ्सियात की पहचान एक एक वो है, आप कह रहे हैं कि टॉपिक है या उनवान है, दुश्मनी के असबाब क्या होते हैं, शैतान का किरदार क्या है, शैतान की दुश्मनी, शैतान के मौसर होने के सबब क्या है, शैतान नफूज किस तरीके से करता है, किन जरियों से करता है, औलाद से मोहब्बत रखना, मकर करने वालों से बचने की अहमियत क्या है, मकर के असबाब क्या है, शख्सियत में मौसर वामिल क्या हो, वामिल क्या है, इस तरीके से अल्लाह जो है ये तमाम आयात की एक आयत बाई आयत को जो है स्टडी करके मुताला करके तो उसके जो है उनवानात भी इसी तरीके से, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये सूरत किस कदर, अगर 233 मैं जी जाहिर मेरी कमजोरी होगी वरना इससे भी ज्यादा यकीनी तौर पर मौजूद होंगे, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि सूरत किस कदर हिकमतों का खजाना इस सूरत के अंदर जो है पोशीदा है। जैसे आप देख सकते हैं इसे कि सूरह यूसुफ को مختلف علماء حضرات نے اور وہ اس کو زبردست اس کے کئی طریقوں سے آپ مطلب کیا. دیکھو کہ مسلمانوں کے مسائل کا حل کسی نے کوئی ہے مولانا انہوں نے اس کو جو ندوی ہیں کوئی وہ انہوں نے اس کو کیا کہ مسلمانوں کے مسائل کا حل جو ہے قرآن سورہ یوسف کی روشنی میں کس طریقے سے. دیکھیں ایک اور بہت زبردست ہے سورہ یوسف علمی نفسیات کے تناظر میں جو ہے وہ دیکھیں کہ یہ جو ہے وہ کیا ہے. پھر سورہ یوسف کی اللہ کے طور پر تفسیر کی گئی ہے صبر و تقویٰ کی زندگی سورہ یوسف کی روشنی کے اندر اور سورہ یوسف کے فوائد ہیں اور جو اس کے اسباق ہیں ان کے اوپر جو ہے عربی اور اردو کے اندر بے شمار کتب جو ہے وہ لکھی گئی ہیں. تو جو ہے یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ سورہ یوسف جو ہے علمی نفسیات تناظر میں کافی جو ہے 350 صفحے کی کتاب ہے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صرف علم نفسیات کے حوالے سے اس صورت کا مطالعہ جو کیا گیا ہے اور جو ہے اتنی چیزیں لائی گئی ہیں. تو میں نے غالباً کوئی 2-2.5 ہزار پیجز کا جو ہے اس صورت کو صورت کی تفاصیل اور صورت سے متعلق جو دوسرا مواد ہے اس میں نے مطالعہ کیا تھا اور ان کی روشنی کے اندر جو ہے آپ کے ساتھ جو مواد جو ہے وہ شیئر کیا گیا ہے دروس کے اندر بھی اور اس فائلس کے اندر جو کلیکشن کی گئی ہے اس کے اندر بھی یہ جو ہے شور کیا گیا ہے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ علماء نے کس طریقے سے اس صورت کے اندر جو ہے غوطہ‌خوری کی ہے اور کس طریقے سے غواص جو ہے اور اس کے بعد پھر جیمز اور جو صورت قسم کے موتی جو ہے وہ حکمت کے چن کے لے کے آئے ہیں ہمارے لیے اور جو پیش کیا اندازہ. تو یہ مقصد بتانے کا یہ ہے کہ یہ سورہ یوسف جو ہے یہ حکمت و اسرار کا ایک پورا خزانہ ہے. تو آپ جو ہے اس سورت سے متعلق آپ نے الحمدللہ ساری سورت پڑھی ہے ہمارے ساتھ لفظ بلفظ دیکھی ہے. آپ سورت سے متعلق یا اس سے متعلق ریلیٹڈ کوئی بھی کوشچن ہے کوئی اشکال ہے کچھ جو نیشن درکار ہو تو آپ ساتھی یا آپ جو ہے اوورال پروگرام کے اوپر کوئی رائے اپنی انپوٹ اپنے تبصرہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ساتھی سارے ویلکم موسٹ ویلکم. آپ کیسے جزاکم اللہ خیرا
بالضبط
آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.